यहाँ तो अरमान आस्था के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी पूरी तरह से केयर कर रहा था, तो सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आस्था का बहुत ज्यादा सर घूम रहा था, लेकिन फिलहाल अरमान को ऑफिस भेजने के बाद आस्था जल्दी ही अपने कमरे में गई। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में भी अरमान ने CCTV लगवा रखा था, ताकि आस्था को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आस्था ने अच्छे से नाश्ता पानी करने के बाद सबसे मिलकर सीधा नानी माँ के कमरे का रुख किया। वहीं दूसरी ओर आकाश रश्मि को बहुत देर से देख रहा था। आस्था के ब्रेकफास्ट करने के बाद सब एक साथ हॉल में बैठ गए थे। नानी माँ ने आस्था को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया था, और नानी माँ इस वक्त सबके साथ थीं, क्योंकि वो किसी को भी इस बात का शक नहीं होने देना चाहती थीं कि इस वक्त आस्था अकेली कमरे में क्या कर रही है। वह आकाश बार बार रश्मि को देख रहा था, लेकिन आज उसका भी वापस से अपने काम पर जाना ज़रूरी था, क्योंकि शादी के माहौल में कभी अबीर सिंह राठौर के चक्कर, कभी वीर रायचंद का ड्रामा, इन सब चक्करों में उन सबका काफ़ी ज़्यादा अपने काम से ध्यान भटक चुका था। लेकिन अब फाइनली सबकी लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी, तो इसीलिए आकाश ने रश्मि से कहा कि वो ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस के बाद रश्मि तैयार रहे, क्योंकि वो आज ही अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे। आकाश ने ये कहते ही रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे तब एहसास हुआ कि जिन लोगों के बीच वो इस वक्त रह रही है, सभी सगे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन रश्मि उन्हें दिल से अपना चुकी थी, इसलिए उन्हें छोड़कर जाना रश्मि को आंखों में पानी ला दिया, और वो अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से बोली, लेकिन आकाश जी, हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश ने कहा, हम आज शाम को अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे। आखिर कब तक हम सिंघानिया मेंशन में रहेंगे? और वो विला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 10 मिनट का रास्ता है। जब भी आपका मन हो आस्था से मिलने का, दादाजी से मिलने का, आप आ सकती हैं, और आपको कोई रोकेगा नहीं। आकाश के ये कहते ही दादाजी का भी चेहरा उतर गया, नानी माँ का भी चेहरा उतर गया, और उन्हें भी महसूस हुआ कि वो इस तरह से ज्यादा दिन सिंघानिया मेंशन में नहीं रह सकती हैं। आखिरकार नानी माँ भी कब तक आस्था के घर पर रह सकती थी? वो तो आस्था के मायके वालों में से थी, और इस तरह से बेटी के ससुराल में ज्यादा दिनों तक रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। वहीं ध्रुव और आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कहीं ना कहीं ध्रुव को भी लग रहा था कि शायद उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ध्रुव तो ज्यादातर आकाश के विला में ही अपना टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन अब क्योंकि आकाश के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रश्मि थी, तो इसीलिए उसका वहाँ जाना अब ठीक नहीं था। तब ध्रुव ने कहा, आकाश भाई, मुझे लगता है कि मुझे भी आज अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद राधिका और रौनक दोनों एक साथ बोली, जी हाँ, और हम भी आज शाम को ही यहाँ से चली जाएंगी। और अब सबके जाने की बात सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं, और वो तुरंत उठ खड़े हुए। वहीं आहान को रौनक को टोकना, उसे उलझना बेहद पसंद आने लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन रौनक को यहाँ से जाना भी पड़ेगा। वहीं सुमित के दिल में भी कुछ चुभा था, क्योंकि जब से आकाश ने उससे वादा लिया था कि वो राधिका के साथ किसी तरह की कोई घटिया हरकत या कुछ भी उस सजा देने के बारे में नहीं सोचेगा, तब से वो बदल चुका था, जिसकी वजह से वो फिजिकली भी राधिका से कनेक्ट हो गया था। तब ये सब सुनने के बाद नानी माँ तुरंत बोली, लेकिन बेटा जी, अगर आप सब लोग इस तरह से चले जाएंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा? आप जानते हैं ना, हमारी बेटी आस्था ने अभी अभी खुशखबरी दी है, वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से अगर सब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उसका क्या होगा? और अगर यहाँ से किसी का जाना बनता है तो वो है हम, क्योंकि हम अपनी बेटी के ससुराल में इतने दिनों तक नहीं रह सकते हैं। नानी माँ की बात सुनकर अब सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब दादाजी तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए और ऑर्डर देते हुए बोले, कोई कहीं नहीं जाएगा, पढ़ाई ऑनलाइन होगी, और रौनक, आप भी आस्था के साथ पढ़ाई कर सकती हैं। तब राधिका बोली, वो एक्चुअली दादाजी, मैंने मेंशन में रहकर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ से मुझे जॉब के लिए ऑफर आया है एक दो जगह से, सो मैं अभी जॉब करूँगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। राधिका की बात सुनकर सुमित उसे घूर कर देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में उसे कहना चाह रहा हो कि इतना बड़ा फ्लैट उसे दिया है, साथ साथ गाड़ी दी है, हर महीने उसका बैंक बैलेंस अच्छा खासा कर दिया है, तो इस लड़की को नौकरी की क्या जरूरत है। लेकिन सुमित को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऑलरेडी राधिका ने सुमित के फ्लैट की चाबी, बैंक डिटेल्स, गाड़ी की चाबी सब कुछ दे चुकी है, और उसने कुछ दिनों तक, जब तक उसका कहीं और ठिकाना मिल नहीं जाता, रश्मि के फ्लैट में रहने का डिसीजन लिया है, वो भी रौनक के साथ। वेल, तब दादाजी राधिका की ओर देखकर बोले, बच्चे, मैं आपको किसी तरह से कोई मजबूर नहीं करूंगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये आपकी जिंदगी है, और हम आपकी जिंदगी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहे। बहुत कम टाइम में आपने हमारे दिल में वो जगह बना ली है जो कि एक बेहद खास है। काश कि कुछ ऐसा हो जाता कि आप सब हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ रह पाते, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके करियर को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगा, अगर आप अपनी कोई पहचान बनाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, कभी भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा, आपके बूढ़े दादाजी का घर हमेशा आपके लिए खुला है। ऐसा बोलकर उन्होंने राधिका के माथे को चूम लिया। राधिका की भी आंखें भर आईं और दादाजी को गले से लगाकर उसने रोना शुरू कर दिया। तब तक रौनक ने भी आकर दादाजी और राधिका को गले से लगा लिया। फिर जल्दी ही रश्मि उन्हें अलग करते हुए बोली, अरे बस कीजिए, ये क्या आप लोगों ने सुबह सुबह इतना इमोशनल सा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। और वैसे भी दादाजी, हम ज्यादा दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम यहीं पास में ही तो हैं, बस आप एक आवाज लगाइएगा, हम दौड़े चले आएंगे। रश्मि की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए, लेकिन रिक्वेस्ट करते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर बोले, मेरे बच्चा, मुझे पता है कि मेरे बुलावे पर आप यहाँ आ जाओगी, लेकिन आप और आकाश यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और रही बात राधिका और बेटी रौनक बेटी की, वो अभी अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना चाहती हैं, अकेले में रहना चाहती हैं, तो बेशक वो रह सकती है और 24 घंटे हमारे गार्ड्स उनके आसपास रहेंगे जो उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन इन्हें हमें वादा करना होगा कि हर छुट्टी पर हर वीकेंड ये हमारे साथ ही बिताया करेंगी। दादाजी की बात सुनकर रश्मि, राधिका, रौनक सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तब नानी माँ रश्मि का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर बोली, मेरी मच्ची, इस वक्त मेरी बेटी आस्था को सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो तुम्हें बहुत मानती है, अपनी बड़ी बहन समझती है, और वो खुद अब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में लाने वाली है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम्हारा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रश्मि के हाथों को पकड़ लिया। और तब रश्मि ने एक नज़र आकाश की ओर देखा और उसके बाद आकाश ने अपनी पलकें हाँ में छपका दी और फिर उसने रश्मि को गले से लगा लिया और बोली, ठीक है नानी माँ, जब तक आस्था की डिलीवरी सही सलामत और अच्छे से नहीं हो जाती, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने नानी माँ को गले से लगा लिया और नानी माँ के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
तब सुमित सपाट चेहरा लिए आगे आया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, दादाजी, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ और मैं शाम को मेंशन आ जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सुमित ने बड़ा ही सिंपल वे में कहा। और दादाजी मुस्कुरा दिए। जल्दी ही अब सब अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन ध्रुव उस वक्त एकदम सपाट चेहरे के साथ आहान से बोला, मुझे भी जाना होगा क्योंकि मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मुझे लगता है कि मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ज्यादा दिनों तक इस तरह से यहाँ नहीं रह सकता हूँ। भले ही मेरा नाम, मेरी पहचान सब कुछ अलग हो, लेकिन अभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो मुझे हासिल करना है। ये बोलकर ध्रुव अजीब सा लग रहा था क्योंकि ध्रुव पर ये सब इमोशंस सूट ही नहीं करते थे। लेकिन अब ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहान ने ध्रुव को गले से लगा लिया। वो समझ चुका था कि इस वक्त ध्रुव कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। भले ही ध्रुव ने उसे नहीं बताया था, लेकिन आहान ध्रुव के हर एक बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ था। आखिरकार दोनों ने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा साथ में गुजारा था, तो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि कब उनकी सिचुएशन क्या हो सकती थी। इसीलिए आहान ने ध्रुव को जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि अगर ध्रुव अपनी जिंदगी का सामना नहीं करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो सकती थी। और कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि ध्रुव को अपनी जिंदगी में अब सेटल हो जाना चाहिए। आखिरकार कब तक वो डिम्पल के पीछे खुद की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया अपने ऑफिस में तो पहुंच चुका था और साथ ही साथ उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अरमान का आस्था के बिना एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार वो आस्था को कभी हॉल में कैमरा के थ्रू देख रहा था, तो कभी अपने कमरे में लगे कैमरास के थ्रू चेक कर रहा था। लेकिन आज आस्था ना तो उसे हॉल में दिखाई दी और ना ही अपने कमरे में दिखाई दी, तो इससे अरमान और ज्यादा झल्ला उखा। अब झल्ला कर अरमान ने घर में सबको फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि सब उस वक्त वापस जाने के डिस्कशन में बिजी थे तो कोई भी अरमान के फोन पर ध्यान नहीं दे पाया। अब तो अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था और इसीलिए केवल एक से दो घंटे के अंदर अंदर ही उसने वापस से घर जाने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर आस्था नानी माँ के कमरे में थी। उसे नहीं पता था कि हॉल में क्या हो रहा है, सब जाने की बात कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, उसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उस डायरी को पढ़ना चाहती थी जो डायरी नानी माँ ने आज उसे दी थी। उस डायरी को खोलते ही आस्था की आंखों में आंसू आ गए। फाइनली आज वो सच पता लगने वाला था, जिसके लिए उसने ना जाने क्या क्या अपने दिमाग में आइडिया लगाए थे कि ऐसा हुआ होगा, क्यों मारे गए होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन आज तक वो सच पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन फाइनली आज उसकी आंखों के सामने सच आने वाला था, तो इसीलिए आस्था ने जल्दी ही वो डायरी खोल ली। वो डायरी खोलते ही सबसे पहले फ्रंट पर उसके पिताजी की फोटो थी, साथ ही साथ उसकी माताजी की फोटो थी। आस्था उनमें कहीं नहीं थी। वो अब आस्था ने जल्दी ही पढ़ना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक। आस्था के पिताजी यानी नानी माँ के दामाद जी, जिनका नाम कुणाल था, वो बड़े ही सीधे साधे से इंसान थे, साथ ही साथ बेहद हैंडसम थे, जो अपनी बीवी संगीता से बहुत प्यार किया करते थे। संगीता की वो हर एक ख्वाहिश पूरी किया करते थे। दोनों हंसी खुशी साथ रहा करते थे। संगीता जब भी ससुराल से मायके अपनी भाभी मनोज और सीमा के साथ रहने के लिए आई थी, नानी माँ को भी वो गांव से वहां बुला लिया करती थी, जिससे सीमा बहुत ज्यादा किलकिलाया करती थी और सारा काम वो घर का संगीता से ही करवाया करती थी और साथ ही साथ उसे हर छोटी छोटी चीज के लिए टॉन्ट किया करती थी। क्योंकि संगीता और कुणाल की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी और संगीता के माँ ना बनने की बात सुनकर सीमा उसे बेहद टॉर्चर किया करती थी, क्योंकि वो ये समझा करती थी कि संगीता बांझ है, इसको कभी कोई औलाद हो ही नहीं सकती है। और नानी माँ खून के घूंट पीकर रह जाया करती थी, क्योंकि वो अपनी बहू या अपने बेटे के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी, इसीलिए वो उनके पास कम रहना पसंद करती थी और गांव में रहना ज्यादा पसंद करती थी। गांव में उनका एक छोटा सा मकान था जो नाना जी बनाकर गए थे। वेल, प्रियंका के जन्म के बाद जब संगीता ने प्रियंका को पहली बार अपनी गोद में लिया तो तुरंत ही सीमा ने उसे अपनी गोद से संगीता की गोद से छीन लिया था और ताना देते हुए बोली, खबरदार जो तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया, कहीं तेरा मन हो साया मेरी बेटी पर आ गया तो। तू तो बांझ है ही, क्या तू हमें भी बेऔलाद करना चाहती है? ऐसा बोलकर उसने उस वक्त उस दिन संगीता की बहुत बेइज्जती की थी। अब संगीता की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर उसका पति कुणाल बर्दाश्त नहीं कर पाया।